नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनु शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकवादी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने संसद भवन में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा, भारतीय रक्षा बल हमेशा तैयार और प्रासंगिक बने रहने के लिए बदलते परिवेश के अनुरूप ढलने और सुधारों को आत्मसात करने के लिए प्रतिबद्ध। केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट अधिकांश जिलों में आगे। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। अमरीकी प्रतिनिधि सभा के 3 सदस्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत से आयात पर 50% तक शुल्क लगाने के लिए घोषित किए गए राष्ट्रीय आपातकाल को रद्द करने का प्रस्ताव पेश किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज संसद आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 13 दिसंबर 2001 को आज ही के दिन सुरक्षाकर्मियों ने संसद की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल ने संसद भवन में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और अन्य सांसदों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्र उन नायकों के साहस, वीरता और बलिदान को नमन करता है जिनकी कर्तव्य निष्ठा भारत की राष्ट्रीय भावना को निरंतर मार्गदर्शन देता है। राष्ट्रपति ने आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को भी दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदैव कृतज्ञ रहेगा। उन्होंने कहा कि भीषण खतरे के बीच उनका साहस, सतर्कता और कर्तव्य निष्ठा सराहनीय थी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके बलिदान को सदैव याद रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद पर कायराना आतंकी हमले के दौरान वीर सुरक्षा बलों के ने अटूट सुरक्षा कवच तैयार किया था। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने कहा कि उनके अदम्य साहस ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों को जड़ से उखाड़ फेंकने के राष्ट्र की प्रतिबद्धता को बदल दिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गम ने कहा कि सुरक्षा बलों के सर्वोच्च बलिदान ने देश के लोकतंत्र और राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जॉर्डन की यात्रा पर रवाना होंगे। उनकी यह यात्रा जॉर्डन नरेश अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली पूर्ण यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष के अवसर पर हो रहा है। इस यात्रा में राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है, जिसमें विशेष रूप से पश्चिम एशिया के क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से सहयोग को और मजबूत करने तथा शांति, सुरक्षा और विकास पर साझा दृष्टिकोण की पुष्टि होने की संभावना है। भारत और जॉर्डन आपसी रूप से मंत्रिपूर्ण संबंध साझा करते हैं। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री की पिछली यात्रा के बाद दोनों नेता 4 बार मिल चुके हैं। इसमें जून 2024 में इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन शामिल है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि भारतीय रक्षा बल हमेशा तैयार और प्रासंगिक बने रहने के लिए बदलते परिवेश के अनुरूप ढलने और सुधारों को आत्मसात करने के लिए प्रतिबद्ध है। हैदराबाद के पास डिंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 216वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड में जनरल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। इससे पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने प्रशिक्षण पूरा करने वाले फ्लाइट कैडेट को राष्ट्रीय कमीशन प्रदान किए। उन्होंने फ्लाइट कैडेट को विंग और ब्रेवेस्ट भी प्रदान किए। प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार दिए। उत्तराखंड के देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज भारतीय सेना में नए युवा अधिकारी शामिल किए गए। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव में विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ और सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ अधिकांश जिलों में आगे चल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की है। अब तक आए परिणाम में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कड़ी टक्कर के संकेत दे रहे हैं। वहीं एनडीए ने कुछ क्षेत्रों में अपनी मजबूत स्थिति भी दर्ज कराई है। छह नगर निगमों में से कोझिकोड़ा को छोड़कर सभी में सत्ताधारी एलडीएफ पिछड़ रहा है। तिरुवनंतपुरम में एनडीए आगे है। अंतिम समाचार मिलने तक 36 नगर निगमों में से यूडीएफ 14 में आगे चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने 8 प्रमुख राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की निगरानी के लिए विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक की नियुक्ति की है। पर्यवेक्षकों को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तैनात किए गए हैं। यह पर्यवेक्षक फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन तक इन राज्यों में उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वंशावली, माता पिता या रिश्तेदारों के नामों के आधार पर नए मतदाताओं की पहचान करते समय 2002 की मतदाता सूची में भारी अनियमितताएं पाई गई है। एसआईआर का पहला चरण समाप्त हो चुका है। निर्वाचन आयोग प्रस्तुत प्रपत्र की निरंतर जांच और दोबारा छानबीन कर रहा है। पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में 58 लाख से अधिक जनगणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। इन मतदाताओं के नाम अस्थायी रूप से मसौदा सूची से हटा दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में अब तक 52.41% मतदाता प्रपत्र की डिजिटलीकरण हो चुकी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि एक समय नक्सली हिंसा से प्रभावित बस्तर क्षेत्र अब नक्सल मुक्त होने की दहलीज पर है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज शिमला में के समीप मस्थाई में भाजपा के नए प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास किया। उन्होंने शिलान्यास पट्टी का अनावरण भी किया। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी की कोलकाता यात्रा के दौरान आज सॉल्ट लेक स्टेडियम में प्रशंसकों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर हंगामा किया। मेस्सी केवल 22 मिनट के लिए ही स्टेडियम में आए थे। इससे हजारों की संख्या में स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों को निराशा हाथ लगी। मेस्सी के आगमन के तुरंत बाद ही स्टेडियम में अव्यवस्था हो गई। इसके बाद आयोजक और सुरक्षा कर्मियों को कार्यक्रम छोटा कर मेस्सी को स्टेडियम से बाहर ले गए। सुरक्षा की चूक और उपद्रव के कारण कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। अमरीकी प्रतिनिधि सभा के 3 सदस्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयात पर 50% तक शुल्क लगाने के लिए घोषित किए गए राष्ट्रीय आपातकाल को रद्द करने का प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव में इन उपायों को अवैध और अमरीकी श्रमिकों, उपभोक्ताओं तथा आपसी संबंधों के लिए हानिकारक बताया है। सांसदों द्वारा रास मार्कवेसी और राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि अगस्त में आपातकाल शक्तियों के अंतर्गत लगाए गए शुल्क अवैध हैं। उन्होंने कहा कि ये शुल्क अमरीका भारत संबंधों को नुकसान पहुंचाते हैं और अमरीकी उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ाते हैं। भारत ने पेरू के डिहाइड्रेशन के मरीजों के लिए 2.5 लाख से अधिक सलाइन की बोतल भेजी है। यह भारत की विश्वसनीय विकास साझेदारी की भूमिका को प्रदर्शित करता है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।